하지.
봐봐. 이제 아스트디언과를 인터클레이션 한 거야.
응?
아스트디언과 아베크 아니면 스마트 아웃텔에 뭘 돼? 아스트디언 프로티스. 네, 프로티스 한 거야.
응.
또 उसमें सिर्फ कुमार कुमारी आदि आदर कुमार भी आ सकते आदर कुमार आ सकती
हम्म क्यों नहीं आ सकते आदर कुमार सरेंडर नहीं हो सकते क्या हां आदर कुमार को सरेंडर होने के लिए मना कर दिया क्या फिर जो सरेंडर होते हैं सिर्फ ईश्वरीय सेवा के लिए वो राजघराने में आते हैं तो ये तो कोई नियम नहीं बताया कि अदर कुमार अदर कुमारियां सरेंडर नहीं हो सकते और
बाबा उनको सहजता से कैसे पहचान जाएगा सहजता से कैसे पहचान ले उनको
उनका मुख्य गुण कौन सा होगा नष्टो मोहा सहनशीलता तो ब्रह्मा बाबा से ज्यादा किसी में नहीं थी तो क्या ऐसे देव हो गए नहीं हुए और
बाबा वो इस वक्त नए संगठन में होंगे
कौन
जो अष्टदेव बोला है प्रत्यक्ष हो गए बाहर भी हो सकते हैं बुद्धि से वहां पर मिलकर
अगर बाहर होंगे भी तो भी अंदर आ जाएंगे लास्ट सो फास्ट चले जाएंगे
अब अभी तो कहा कि वो सरेंडर होंगे ऐसा कहा ना अष्टदेव सरेंडर होंगे ऐसा कहा ना
अष्टदेव नहीं जितने भी 16108 हैं राजघराने में आने वाले वो सब सरेंडर होंगे भले लास्ट में सरेंडर हो तो भी लास्ट सो पुरुषार्थ में फास्ट जाने वाले होंगे और
अभी जो यूनिट में जाते हैं ना तो जो 50,000 का सूर्यवंश का ग्रुप बताए जो 50,000 का सूर्यवंश का ग्रुप बताए
50,000 सूर्यवंश
साढ़े चार लाख को डिवाइड किया 50,000 सूर्यवंशी बचे हैं
क्यों साढ़े चार लाख सूर्यवंशी नहीं बनेंगे
मतलब पक्के पक्के सूर्यवंशी 50,000 तो जो एनएस में जाते हैं अभी वो वही वही है सूर्यवंशी
50,000 ना एनएस में पहुंच गए होंगे
नहीं नहीं अभी जा रहे ना थोड़ी थोड़ी एक एक करके
तो 50,000 की बात क्यों शुरू कर दी
नहीं अंत में मतलब जो एनएस में अभी जा रहे हैं वो मतलब वही सूर्यवंशी जो दूसरे धर्म के बीज वगैरह होंगे वो
एनएस में जाने वाले फिक्स हो गए क्या है वो उतर करके वापस नहीं जा सकते भागंती नहीं हो सकते
बाबा असली एनएस किसको कहेंगे
हैं
असली एनएस किसको कहेंगे
क्या
असली एनएस किसको कहेंगे
आत्मिक स्थिति
असली एनएस किसको कहेंगे
ओरिजिनल
एन एस कोई मुरली का शब्द नहीं है एन एस कोई मुरली का शब्द नहीं है ये तो नया संगठन बता दिया कि नई दुनिया की स्थापना के कार्य के लिए जो फाउंडेशन डालने वाली एडवांस आत्माएं हैं उस संगठन का नाम क्या रख दिया एनएस माने शॉर्ट नेम नया संगठन हाँ
मनबुद्धि की बात है मनबुद्धि की बात
तो सम्मान बुद्धि तो 500-700 करोड़ सभी को है क्या पूछना चाहते हैं
जो नए संगठन में जाकर फिर बाहर की दुनिया में वापस चले जाते हैं उनका क्या फायदा फिर नए संगठन में जाने का
और नीचे गिर जाते भक्ति के गड्ढे में जाने के संस्कार कुछ बचे हुए होंगे तो वो पूरे हो जाएंगे और टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी करो
बाबा। लेकिन एनएस में भी बाबा ही भेजते हैं
ना,
एनएस में भी बाबा ही भेजते हैं ना करने।
बाबा भेजते हैं काशी के लिए क्या गायन है? हैं? जो मरते हैं सो स्वर्ग में जाते हैं, तो बाबा मारते हैं
हाँ। अभी जो एनएस में जो
जो जाते हैं वो देह अभिमान से, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से बुद्धियों को खुद ही तोड़ते हैं कि बाबा तोड़ते हैं? खुद ही तोड़ते हैं।
लेकिन सिलेक्शन तो
देह के बाबा सिलेक्ट करते हैं, माने बाबा पार्सलिटी ही करता है कि कोई को सिलेक्ट कर लेता है, कोई को रहने देता है, हैं? बाबा को
समझता है ना इसमें
क्या, इसमें देवान खत्म हो गया,
देह के संबंधी छोड़ रहा है,
तो प्रूफ क्या है इसका? अरे आखिरी फिर भी प्रूफ तो वही निकलता है कि दुनियादारी से मोह नष्ट किनका हुआ है? नंबर वार जिनका मोह नष्ट होगा वो ही तो छोड़ छाड़ करके जावेंगे।
बाबा हनुमान ने पाव जमाया ना रावण की सभा में?
हाँ, शास्त्रों में दिखाते हैं जमाया तो अंगद ने, किसने? अंगद, जिसने अपने अंग अंग को ईश्वरीय सेवा में दे दिया, उसने बुद्ध रूपी पांव जमा दिया कि रावण हिला के दिखाए। हाँ तो
ब्रह्मा बाबा को हनुमान बोलते हैं, ब्रह्मा बाबा को हनुमान बताया ना
हाँ।
और फिर उनको ही रावण बताते
हैं,
फिर ऐसे
क्यों ब्रह्मा के बाप को रावण नहीं बताया? तो बता दिया, सब मनुष्य बात है, सभी रावण है।
किसकी सभा में पाव जमाए
हैं?
किसने किसकी सभा में पाव जमाए?
नंबर वार हैं पाव जमाने वाले कि एक ही है?
शुरुआत तो कोई करेगा,
तो शुरुआत कौन करेगा सो पता नहीं है। आखिर कोई नारायण बनेगा या नहीं बनेगा पहला? तो जो पहला नारायण बनेगा वही शुरुआत करेगा।
है पहला हनुमान,
हनुमान गए तो पहला, महावीर गए तो। और
बाबा अभी मुरली में बोला ना, जमीली और बाजारी बैल दोनों मिल गए।
मुरली
आज बोला ना,
हाँ। अजा मिली, अजा मिल, हाँ हाँ अजा मिली, स्त्री और पुरुष दोनों मिल गए। स्त्रियां वैश्याएं बन गई और पुरुष अजामिल बन गए।
दोनों मिल गए बोला ना,
हाँ किससे मिल गए? माया से मिल गए। माया जो बकरी का रूप है, मैं करने वाली है, उससे मिल गए। अजा मिली नहीं हो गई, वो तो अजा है ही, माया तो है ही अजा। भगवान की बात सबसे ऊंचा अपने को कौन समझती है? माया ही तो अपने को सर्वशक्तिमान समझती है, और है भी कि नहीं है? वर्तमान में है भी, जैसे भगवान सर्वशक्तिमान है वैसे माया भी सर्वशक्तिमान तो अभी तो है। जब बच्चे जीत पहन लेंगे तो नहीं रहेगी।
और बाजारी बैल किसको बोलूं?
बाजारी बैल पुरुषों को। पैसा किनके हाथ में रहता है? बाजार पैसा के आधार पर चलता है कि बिना पैसे के आधार पर चलता है? पैसे के आधार पर बाजार चलता है। तो पैसा स्त्रियों के हाथ में रहता है, पुरुषों के हाथ में रहता है? पुरुष व्याप्त रहते हैं।
तो पहला पुरुष पहला पुरुष प्रजापिता तो वो प्रजापिता और कुमार का दादी मिले थे क्या?
यज्ञ के आज में कुमार का दादी नहीं थी क्या? अगर नहीं थी तो कुमार का दादी प्रजापिता के नाम से इतनी डरती क्यों थी? जब एडवांस ज्ञान निकला पहले तो प्रजापिता का पीयू का नाम बहुत बोलते थे, फिर बाद में बोलना एकदम, तो इतना डर डर काहे का था? किस बात का डर था?
प्रजापिता
क्या डर था प्रजापिता का?
वो सच्चाई दिखाएगा, सच्चाई बताएगा।
अरे अजामिली बनी होगी ना तो नाक कट जाएगी ना। और
रामपुरी
राधा का नहीं बनती है वो, वो बेविचारिणी बनती है क्या? आज तो बताया काले बनते कैसे है, बेविचार से काले बनते हैं। कामना तो सतयुग में भी होती है, सतयुग बच्चे पैदा नहीं होते क्या? भावी बच्चे पैदा होते हैं।
अंत तक राधा काली नहीं बनती, अंत तक राधा काली नहीं बनती,
कभी क्या नहीं बनती है। अरे दुनिया में 500-700 करोड़ पत्ते हैं, सब पत्ते एक जैसे होते हैं या अलग अलग क्रियाकलाप वाले होते हैं? तो कोई ऐसा पत्ता भी तो होगा जो जन्म जन्मांतर एक आत्मा के साथ ही स्त्री पुरुष के संबंध में रहे। तो ऊपर बैठ करके आकाश में बैठ करके एकदम वासुदेव के पीछे ही पड़ गया। हाँ बोलो क्या कह रहे?
नीचे हो रहे होंगे,
ऊपर नीचे हो रहे होंगे। ऊपर नीचे जब हो रहे होंगे उस समय बोला कि अभी ऊपर नीचे हो रहे होंगे?
अभी की बात पूछ रहे, अभी की बात पूछ रहे।
तो बाबा ने अभी की अष्टदेव की बात बोली थी या कई साल पहले बोली थी कि जो अष्टदेव हैं वो भी ऊंच ऊपर नीचे हो रहे हैं? है? अभी अभी आप अभी अभी डाउन उस समय बोला था या अभी बोला है? उस समय बोला था।
बिजली महाराज से चार आते हैं और सूर्य से चार आते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या?
अष्ट देव हैं तो प्रवृत्ति मार्ग के हैं या निवृत्ति मार्ग के हैं? तो निवृत्ति मार्ग के अगर रहे सूर्यवंशी ही सिर्फ तो उनको देव कहेंगे? देव बनने के लिए उन्हें माता गुरु को माता गुरु बनाना पड़े या नहीं बनाना पड़े? पवित्रता अगर जीवन में धारण करनी है देवों को तो माता को गुरु, अपवित्रता पर जीत पाने के लिए माता को गुरु जरूर बनाना पड़े। तो जो गुरु बनाया जाएगा वो ऊंचा या चेला ऊंचा? तो उसको आगे नंबर नहीं देंगे? इसलिए भारत में माताओं को आगे रखते हैं। ये हाई मातृ प्रधान देश, और देशों में माताओं को आगे नहीं रखते हैं। और गुजरी हुई नहीं। आत्मिक स्थिति की बात है या मेल फीमेल की बात है, कौन से पुरुषार्थ की बात है? जो आत्मिक स्थिति पहले धारण करे वो यशदे में आएंगे।
उनमें भी चार लेफ्ट किस रहेंगे और चार राइट किस रहेंगे? चार लेफ्ट किस रहेंगे और चार राइट किस रहेंगे?
हाँ, पुरुष जो है वो राइटियस हुए स्त्रियों के मुकाबले या लेफ्टिस्ट हुए? लेफ्टिस्ट हुए।
मतलब चार ब्रह्म को फॉलो करने वाले होंगे और चार बाप को फॉलो करने वाले होंगे।
ठीक है,
सूक्ष्म शरीर है ब्रह्मा बाबा के, जो सूक्ष्म शरीर है और उनकी आत्मा है, उसमें आत्मा तो बलशाली होनी चाहिए, लेकिन अभी सूक्ष्म शरीर हावी होने का क्या?
आत्मिक स्थिति उनकी बनी है?
नहीं, बनी नहीं है।
तो जो जो 69 तक जो उनका पुरुषार्थ था उसमें आत्मिक स्थिति की पावर ज्यादा थी या देह अभिमान की पावर ज्यादा थी? है? तो लंबे समय की पुरुषार्थी जीवन में लंबे समय की पावर कौन सी हुई? देह अभिमान की ज्यादा हो गई, तो देह अभिमान ही अंत तक उनको अड़चन डालता रहेगा। इस्लाम धर्म की जो आत्मा होगी उसको काम विकार ज्यादा अड़चन डालता रहेगा, मुस्लिम धर्म की आत्मा होगी उसको लोह विकार अड़चन डालता रहेगा।
चढ़े जाके तो अमृत रस गिरे, चढ़े जाके तो अमृत रस गिरे तो चखना चाहिए।
इसका अर्थ अमृत रस
गिरे तो चखना चाहिए, इसका अर्थ क्या? और किसके ऊपर लागू?
माना जो पवित्रता की स्टेज में चढ़ता जाए तो अमृत रस का अनुभव करता जाए, मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलता जाए तो खुशी आएगी या दुखी होगा? तो चढ़े तो चाहे अमृत रस और गिर गया, शक्ति छीण हो गई, आत्मिक स्थिति से देवान में गिर गए तो मनन चिंतन मंथन चलना बंद हो जाएगा।
और ये ब्रह्म के ऊपर किसके ऊपर, किसके ऊपर लागू होता है? किसके ऊपर लागू होता है?
सभी के ऊपर लागू होता है। ने पूछा है अगर एक साल तक सिर्फ बड़े संगठन में जाएं और छोटे संगठन में न जाएं, माने महीने में जो बड़ा संगठन होता है उसमें जाएं और छोटे संगठन में न जाएं, तो क्या दोबारा भट्टी करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी। जाओगे तो तुम्हारा फायदा होगा, नहीं जाओगे तो तुम्हारा फायदा होगा। बड़े संगठन में दो महीने में एक बार जाओगे तो भी भट्टी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मुरली में बोला है जो बच्चे दो महीने तक चिट्ठी भी नहीं लिखते तो मर गई। अब दो महीने में बड़े संगठन में एक बार तो आ जाते हैं, मोहरा तो दिखाए जाते हैं परिवार के और बाबा मोहरा तो देख लेते हैं, तो मरे हुए कहे जाएंगे जिंदा कहे जाएंगे? है जिंदा है तो जो जिंदा है उनको भट्टी करने की दरकार है फिर? नहीं, भट्टी करना माने गर्भ में जाना, जैसे वो नौ महीने की भट्टी होती है, बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट तो लो और सहज कर दिया, तुम तो एक ही महीने के लिए पूछा और बाबा ने तो दो महीने की छुट्टी दे दी, चलो दो महीने में तुम एक ही दिन संगठन करो, मत आओ, जितना कायदा उतना फायदा। रोज संगठन अटेंड करेंगे तो पक्के हिंदू धर्म की, और रोज न किया है दूसरे तीसरे सप्ताह में दो चार बार किया तो कच्चे हिंदू धर्म के असत्ता हमें एक बार ही किया संडे संडे या जुम्मा जुम्मा, तो कम से कम मुसलमान और क्रिश्चियन तो बने रहेंगे। तो प्लानिंग बना रहे हैं, महीने में एक दिन आए तो चलेगा क्या? तो बाबा कहेगा अच्छा तुम दो महीने में एक बार आओ। कोई मेहमान हमारे घर में आते हैं और कहते हैं हमारे पांव छुओ, अगर हम पांव नहीं छूते हैं तो उनको अपमान लगता है, लेकिन बाबा ने तो मुरली में कहा है। किसी के आगे नहीं झुको, बाबा ने ऐसे बोला है? बाबा ने तो नहीं बोला, हाँ ये बोला है कि माथा नहीं झुकाना है, कोई के सामने माथा नहीं झुकाना है, माथा सिर्फ एक शिव बाबा के सामने। तो माथा झुकाने का मतलब क्या है? बुद्धि से झुकाना, झुकना बुद्धि को झुकाना माने एक की बात मानना, दूसरों की बात नहीं मानना। तो पांव छूने वाली बात जो पूछी है उसमें अगर कोई पांव छू लेता है अंदर से शिव बाबा को याद करता रहता है और पक्का कहता है हम इसकी बात तो जिंदगी में कभी नहीं मानेंगे जिसके पांव छूते हैं, हम तो शिव बाबा की बात मानेंगे, तो वो श्रीमत पर चल रहा है या श्रीमत की अवहेलना कर रहा है? श्रीमत पर चल रहा है। क्या पूछा है? है विष्णु? हाँ खड़ा इसीलिए देखा है, पवित्रता में खड़ा रहता है, पवित्रता में गिर नहीं जाता। जब शक्ति का पतन हो जाता है ना तो आदमी की क्या हालत हो जाती है, आदमी औरत की है? गिर जाते हैं, आराम चाहिए लंबे टाइम का, पड़ गए। तो विष्णु
खड़ा है,
विष्णु पवित्रता की स्टेज में खड़ा है या पड़ा है?
खड़ा है,
खड़ा है। अब ब्रह्मा जी और शंकर जी
है
न पड़े हैं न खड़े हैं, मीडियम में बीच में चल रहे बैठे हैं। क्या कहना चाहते हैं इसका है? और हाँ जी
बाबा, भारत में बहुत सारे सत्संग मैंने सुने देखे
है?
सुने देखे सत्संग,
लेकिन बहुत सत्संग सुने और देखे।
हाँ जी हाँ। लेकिन एक ही सच्चा सत्संग है, आप जब बाप संगम में आते रहा वह सत्संग है, मैंने अपने मन में संविधान किया और इसके लिए मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ।
क्या कह रहे हैं ये?
सही बात है पर।
अरे सही बात है, सो समझ में तो आए पहले, किसी को समझ में आई क्या कह रहे हैं ये?
आज कोई भी सत्संग होना दूसरा
हाँ।
तो उसके साथ में कोई भी बात पे जॉब प्रश्नोत्तर पे जॉब करने ले रही हूँ।
और सत्संगों में प्रश्नोत्तर करने की इजाजत नहीं होती है, ये बाबा जब आते हैं तो कहते हैं कि प्रश्नोत्तर करो, कोई बात का अटकती है तो उसको पूछो, बोलना थोड़ी है
वो तो है
हाँ।
और कोई सत्संग ऐसा बोलना चाहता है हम ऐसा 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 करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन अगर सही होगा तो उनको आप करने देंगे, नहीं तो उनको करेंगे ना, रोकेंगे ना,
ओके थैंक यू।
अपना संगठन जो है वो सच्चा है, सत्संग है वो सच्चा है, दूसरे जो है उनके यहाँ इतना ये नहीं। अगर वो कुछ कहेंगे कि हमारा सत्संग अच्छा है तो हम मैं उनसे ये करूँगा,
ये प्रश्न करूँगा कि तुम्हारे सत्संग में प्रश्नोत्तर करने की इजाजत है, हैं? वो कहेंगे नहीं तो झूठा है। और सत्संग करने की, सत्संग में प्रश्नोत्तर करने की इजाजत है तो हम तुम्हारे गुरु के सामने प्रश्न करेंगे तो पता लग जाएगा ये झूठा है या सच्चा है। लेकिन तुम दुनिया भी कोई व्यक्ति आ जाए जिसने साप्ताहिक कोर्स न किया हो, एडवांस कोर्स न किया हो, तो तुम उसको इजाजत दोगे? वो तो वो ये प्रश्न, वो ये भी पेज रखेंगे कि जैसे तुम हमको चैलेंज करते हो तो हम भी तुम्हारे सत्संग में आके बैठेंगे, हम भी प्रश्न करेंगे
और सद्गुरु कोर्स करूं
ऐसे ही वो कहेंगे कि हमारे आगे गुरु गुरु से मंत्र लो।
ऐसे नहीं, जब आपको हमारे सत्संग में आना है ना सदन विशिष्ट,
वो भी यही कहेंगे अगर तुमको हमारे सत्संग में आना
लेंगे ना, जब आपस अगर आपको झुंडे रहे तो ओम शांति पीछे हटेंगे, अगर आपका झूठ निकला तो हम पीछे हटेंगे
नहीं हटेंगे। हाँ तो वो भी यही कहेंगे हमारे, हमारा भंडारा चल रहा है पहले खाना खाओ इसमें, हमारा ये नियम है, हमारे स्कूल का ये नियम है कि तुम हमारा भंडारा चल रहा है उसमें खाना खाओ, पहला नियम ये। दूसरा नियम ये है, दूसरा नियम ये है कि हमारी सत्संग को अटेंड करो और जो गुरुजी मंत्र देते हैं वो मंत्र करो।
मंत्र करने के आगे क्या,
फिर तुमको परमिशन देंगे प्रश्न पूछने की? आप तुम सर घुसराने लगे ये कोई बात नहीं। और
पीछे से चिट्ठी बाबा आपने वो पढ़ना, बाबा कहते हैं किसी के सामने माथा नहीं झुकाना है, लेकिन बाबा किसी को पीठ का दर्द है तो मैं उनको पैर में, पैर से दर्द कम करने की कोशिश करती हूँ।
ये वो अच्छा, माने पीठ में दर्द है तो पाँव से दवा देती हूँ
तो लोगों को आराम मिलता है।
लोगों को माने बहुत लोगों को दबाते हैं क्या? अच्छा,
जो पायलू बोलते हैं ना बाबा, पायलू पाय से पैदा होते हैं ना, उन लोगों से ऐसा आराम होता है, ऐसे बोलते हैं कि वो पाव लगाने से
आराम हो जाता है।
तो लोगों को आराम मिलता है लेकिन उनको पैर लगता है तो मुझे उनके पैर पड़ना पड़ता है, तो उसकी शूटिंग क्या होती है? उनको पाव लगता है ना तो मुझे पैर पड़ना पड़ता है, ऐसे
कोई बात थोड़ी हुई। शूटिंग शूटिंग संकल्पों से होती है या प्रैक्टिकल इंद्रियों से होती है? संकल्पों से शूटिंग होती है। तुम्हारा संकल्प क्या है, उनको सुख देने का संकल्प है या दुख देने का संकल्प है? उनको सुख देने का संकल्प है ताकि उनका दर्द बंद हो जाए, ये तो अच्छा संकल्प है। तो इसकी शूटिंग ये थोड़ा ही होगी कि वो तुमको पाँव लगाएंगे,
जो पाँव लगाती है ना तो वो खुद उनका पाँव पड़ती है क्योंकि मेरे पैर लग गए, तो इसकी शूटिंग क्या होगी, पैर पड़ना है या नहीं?
अरे पाँव लगाया तो इसका उल्टा जवाब ये नहीं होगा कि वो हमको पाँव लगाएंगे, ये संकल्पों की शूटिंग की बात है। संकल्प जो है तुम्हारा ये है पाँव लगाने का कि उनको सुख मिल जाए, दर्द बंद हो जाए, अच्छा संकल्प है ना? तो अच्छे संकल्प का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा? अच्छा मिलेगा। और
कुंडलिनी प्रकट
होती है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, ऐसे साधु संत महात्मा बोलते हैं, कहते हैं कुंडलिनी जो है वो आठ चक्र हैं शरीर में, सर के तालू से लेकर के और रीढ़ की हड्डी के नीचे तक, तो रीढ़ की हड्डी के नीचे कुंडलिनी सोई पड़ी है, वो जागृत होती है तो ऊपर की ओर भागती है, और जो सबसे ऊपर का चक्र है सहस्त्रासार, उसमें प्रवेश कर जाती है तो सदगति हो जाती है। ऐसा आज तक किसी का हुआ तो नहीं। ये कपोल कल्पित बातें बनाई हैं। अगर एक का हुआ होता तो उसके चेलों का भी हुआ होता। ये कुंडलनी शक्ति कोई चीज नहीं है। रीढ़ की हड्डी के नीचे की ओर स्त्री और पुरुष की रजवीर की शक्ति समाई हुई है, जो शक्ति क्षीण हो जाती है देह अभिमान के कारण। वो शक्ति क्षीण होना बंद हो जाए तो वो शक्ति कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी? तो वो शक्ति ऊपर जाना शुरू होगी और ऊपर जाते जाते एक ऐसी स्टेज हो आ जाएगी कि कितना भी उस व्यक्ति को देह अभिमान में लाया जाए, कितना भी उसके साथ हरकत की जाए देह अभिमान में लाने की, मान लो कोई बलिष्ठ पुरुष है और उसको सुंदर से सुंदर स्त्रियां पेश कर दी जाए, फिर भी उसको कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। उसको कहते हैं कुंडली शक्ति जागृत हो जाना।
हाँ, जो कुंडली शक्ति जागृत कौन ने रशिया में कर दिया अपने भारत की?
क्या
नाम भूल गया मैं एयरपोर्ट पे देखा था उसको। कुंडली शक्ति जागृत करती इसके लिए रशिया अमेरिका इधर उधर भागती हो, कौन उसका नाम याद नहीं अभी अभी 400 पेड़ में उसके नाम याद नहीं आ रहा है। निर्मला है, निर्मल दी
क्या
कुंडली शक्ति जागृत करती?
इसकी जागृत करती
नहीं, वो इधर उधर घूमती है एयरपोर्ट पे। मुझे उस टाइम गया ना तो उस टाइम मुझे पता चला ना तो पुण्य जो शक्ति जागृत करते ऐसे लोग बोल रहे थे। तो क्या बात है,
लोग बोल रहे थे?
नहीं, मुझे मालूम नहीं था ना उसके बारे में।
शरीर छोड़ा है जो कुंडली शक्ति जिसकी जागृत हो जाएगी वो शरीर छोड़ेगा?
नहीं नहीं, वो
शरीर छोड़ने की दरकार
नहीं। शक्ति जागृत किसी को लेती है लोगों को मुझे शिविर में बता दी थी कुंडली शक्ति जागरूक करने
का। कोई प्रोग्राम होता है ना उसमें बोलती
नहीं, ये भाई जिनका नाम पता है ना तो वो आत्मा ने शरीर छोड़ा है कुछ दिन पहले।
नहीं वो पता नहीं,
ये सब कपोल कल्पित गाथाएं हैं। जब इस ज्ञान की प्रत्यक्षता होगी उस समय सब दूध का दूध और पानी का पानी होने लगेगा।
आप इसलिए बाबा बोलता मैं कि और जो सत्संग है इसका पानी का पानी होने वाला है।
तो सब सत्संग वाले कहते हैं, आसाराम बापू के जो भगत हैं वो भी यही कहते हैं।
लेकिन सही रीति से जब उसमें जावे इसके बाद पता चलता है, ऐसी बात है।
तो जाते क्यों नहीं?
नहीं, ये सत्संग जाने के बाद उसको उनको भी पता चलेगा ना ये क्या है। उनको अगर कोई कोई शंका तो उनको जवाब भी नहीं देगा।
वो भी यही कहते हैं।
नहीं मैं कहता प्रश्न पूछ रहा हूँ उनको तो भी उनको जवाब देने नहीं आएगा। जवाब देने नहीं आएगा। अगर मैं तो आपका बच्चा हूँ फिर भी मैं उनको प्रश्न पूछूंगा तो उनको जवाब नहीं देना आएगा।
क्यों नहीं देना आएगा?
नहीं आएगा क्योंकि मैं कहता आत्मा परमात्मा ज्ञान है ही नहीं उनके पास। वो सिर्फ ना ऐसी ऐसी बातें करते अगड़म पगड़म बातें।
बाबा कहते सौ को समझाएंगे तो एक तो निकलेगा। तुमने सौ को उनके सत्संग में जाके सौ को समझाया?
नहीं नहीं
नहीं नहीं,
एक बात बताओ बाबा, जबकि हमने अगर उनके पास ये शक्ति होती
तुम्हारे पास वो शक्ति है?
नहीं नहीं शक्ति नहीं, लेकिन मैं कहता हम अभी उस कारण से चल रहे ना उसके अनुसार जो बाबा जी दिया है ना हमें, आप आत्मा समझो खुद को और भगवान बाप को याद करो। आत्मा समझ के भगवान बाप को उनके पास क्या है?
हमारा मंत्र याद करो।
गुरु
वो भी कहते हमारा मंत्र याद करो।
नहीं नहीं, लेकिन मंत्र याद करो उससे क्या फायदा क्या आगे?
हाँ तो तुम्हारे शिव बाबा को याद करने से क्या फायदा है?
तो हमारा आगे जो हमारे पता है ना अगले दिन हमारे किसका मिलना है पता है ना
हा?
अगले दिन हमें कब से मिलना है पता है ना
भूल जाएंगे हमारे पिछले जन्म हमें हमको सब पता है
ऐसा नहीं ना बताओ फिर हमें
बताओ तुम जो कुछ बोलते हो हमारा जन्म ये होगा नारायण का जन्म होगा ये सब झूठी बातें हैं
झूठी बात कैसी जबकि
झूठ बोलते तुम अभी झूठ बोलते हो तुम्हारा अगला जन्म याद है तुम्हारा अगला जन्म कौन से देवता का होगा कहाँ मालूम मालूम है
अगला जन्म लेकिन सत्यु का तो होगा ना
कौन से देवता का होगा
कौन से देवता ये नहीं
ये। चलो
बाबा हाँ। विदेश में एडम और ईव को मानते हैं दो ही मूर्तियां मानते हैं
हाँ।
और भरतवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर सब तीन मूर्तियों को मानते हैं तीन मूर्तियों को मानते हैं भारत में
तो माता पिता को नहीं मानते जगत पिता जगदम्बा को नहीं मानते फिर क्या बात जैसे वो मानते हैं एडम ईव को वैसे भारतवासी भी मानते हैं जगत पिता जगदम्बा को बोलते भी हैं जगतम पितरम बंदे पार्वती परमेश्वरु ये हमारी जगत के आदि माता पिता हैं
बाबा सर्वानुवाद त्रिमूर्ति शिव त्रिमूर्ति शिव भगवान है
हाँ तो तीनों मूर्तियाँ भगवान हैं
देश विदेश में एडम ईव को मानते हैं भारतवासी तीन मूर्ति ये क्या भारत
आप पूछना क्या चाहते
भारत में तीन मूर्तियों का गायन जी ना
भारत में तो सारे 33 करोड़ देवताओं को मानते हैं
भगवान
भारत में तीन मूर्तियों क्या सभी को मानते हैं जो आया सोई भगवान कणकण को भगवान कुत्ता बिल्ला सब भगवान अकेली तीन मूर्तियों की बात थोड़े ही है भारतवासियों के लिए मैं अकेला नहीं आता हूँ किसके साथ आता हूँ तीन मूर्तियों के साथ आता हूँ वो तीन मूर्ति वो झंडे के तीन चैतन्य कपड़े अभी प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं क्या प्रत्यक्ष हुए या नहीं हुए जब प्रत्यक्ष हुए तो ये प्रश्न खत्म हो जाता प्रत्यक्ष नहीं है तब ये प्रश्न उठता है अरे गीता माता एक नहीं है गीता माता दो हो गई एक को बच्चे ने पोल्यूट कर दिया कृष्ण बच्चे ने क्या गड़बड़ कर दिया है जो माता था उस माता का पति बन करके बैठ गया अपने कंट्रोल में लेके बैठ गया तो एक झूठी गीता हो गई और एक सच्ची गीता थी
बाबा ये गीता का भगवान कौन है ये अभी सिद्ध कर पाएंगे या 2018 में जब वो सच्ची गीता आएगी और अपने मुख से कहेगी कि मेरा पति जो है वो शिव शंकर भोलेनाथ है तब होगा या अभी सिद्ध हो सकता है या अभी हम सिर्फ प्रयास ही कर सकते हैं
ये प्रत्यक्ष करने के लिए प्योरिटी की पावर चाहिए या इम्प्योर आत्माएं भी वो कार्य कर सकती हैं प्योरिटी की पावर चाहिए
बाबा को सिद्ध करना मतलब विजय पाना है। अगर बाबा को सिद्ध करके बताना है कि गीता का भगवान शिवशंकर भोलेनाथ है तो किसी बात में विजय पाने के समान हो जाती है। तो ये विजय पाने के समान की बात के लिए बाबा ने बोला तो बच्चों में विजय तब होगी जब ये सन्यासी तुम्हारे सहयोगी बनेंगे। तो हम अभी जितने बाबा को सिद्ध करने चाहेंगे तो ऐसे तो दूसरे मालूम बाबा ने बोलता पवित्रता को धारण नहीं कर सकते, कुछ परसेंट तक धारण कर सकते हैं। तो जब तक वो विजय वाला नहीं आ सकती तो ये बाप का जो प्रत्यक्षता का बाप या अधूरे ने किया इससे पहले भी कुछ हो सकता है सिद्ध करने की बात। गीता का भगवान कौन?
जितने भी दुनिया में धर्म है उन सभी धर्मों के बीच में ज्यादा पावर कौन से धर्म में है? नौ धर्मों में भी वर्तमान के हिसाब से ज्यादा पावर किस में है? है क्रिश्चियंस में प्योरिटी ज्यादा है, किस में ज्यादा प्योरिटी है? है इस्लाम में ज्यादा प्योरिटी है, सिख में ज्यादा प्योरिटी है, जो आता ही है कलयुग के मध्य में सनातन धर्म वालों की ज्यादा दुर्गति होती है या कम दुर्गति होती है? वो तो सबसे ज्यादा दुर्गति को पाए हुए हैं, वो पावरफुल कहाँ से हो गए? हाँ, सन्यासियों ने भले असली पवित्रता को धारण नहीं किया फिर भी पवित्रता से उनको हमारे मुकाबले ज्यादा प्यार रहा जन्म जन्मांतर या कम प्यार रहा? ज्यादा प्यार रहा, इसलिए वो ज्यादा पावरफुल है। ज्यादा पावरफुल होने के कारण गवर्नमेंट के ऊपर उनका आधिपत्य है। अभी गवर्नमेंट के बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े कलेक्टर, बड़े बड़े डायरेक्टर किसके पांव पड़ रहे हैं? उन्हीं सन्यासियों के पांव चरणों में गिरते हैं जाकर, उनकी बातों को ज्यादा मानते हैं और कोई की बातों को नहीं मानते। तो पावर है तब तो ऐसा हो रहा है, क्योंकि मुरली ने बोला है जो पतित होते हैं वो पावन को जाके माथा नवाते हैं। तो सन्यासियों में पवित्रता की पावर है या नहीं है? है। इसलिए जब ये सन्यासी निकलेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी।
बाबा सजाए खाकर बगोची बनेंगे,
छोटा मोटा पद पा लेंगे। बाबरची कहते हैं रसोईया को।
उर्दू बोल गिरे हुए डंडा खड़े हुए डंडा।
अरे उर्दू में जो अक्षर होते हैं उन अक्षरों में पहला अक्षर अलफ है और वो अलफ जैसे विष्णु खड़ा हुआ है ऐसे खड़ा हुआ डंडा बना दो, जैसे हिंदी का विराम है तो वो उर्दू में अलफ कहा जाता है, और उस डंडे को गिरा दो तो नंबर दो का अक्षर कहा जाएगा। ज्यादा अच्छा नंबर अव्वल नंबर होता है या दो नंबर का अच्छा माना जाता है? अव्वल नंबर अच्छा माना जाता है। तो खड़ा डंडा है अलफ, अलफ माने अल्लाह, अल्लाह माने ऊंचे से ऊंचा, और ऊंचे से ऊंचा, नीचे से नीचे, इस दुनिया की बात है या निराकारी दुनिया की बात है? साकार दुनिया की बात है। वो कलयुग अंत की बात है। कलयुग अंत में उल्टा हो जाता है। क्या जो दिखावा करने वाले हैं वो ऊपर चले जाते हैं, क्रिश्चियन धर्म वाले, और जो भोले वाले हैं वो नीचे गिराए जाते हैं। अष्टदेव है रुद्रमाला से, जो सूर्यवंशी है ओरिजिनल, और फिर विजयमाला से उनकी सहयोगिनी शक्तियां निकलती है, क्योंकि विजयमाला में भी 108 मणके हैं। तो जो चंद्रवंश से निकलते हैं वो 8 देवियां हैं, और सूर्यवंश से निकलते हैं वो अष्टदेव हैं। और 108 क्या है? मन का कौन सा है? मन 108 में 108 मणके रुद्रमाला में भी है, और 108 मणके विजयमाला में भी है, माने चंद्रवंशियों की माला। उस विजयमाला में रुद्रमाला के 108 मणके बाद में ऐड किए जाते हैं, तब पक्की विजयमाला बनती है। उसे कहते हैं वैजयंती माला। अंत में जिन्होंने विजय प्राप्त की वैजयंती माला। विजयमाला तो अभी भी बन रही है, रुद्रमाला पहले बन जाती है, परंतु विजय कोई की भी नहीं है। जब दोनों मिलकर के स्वभाव संस्कार से एक हो जाते हैं तो विजय हो जाती है, तब कहते हैं वैजयंती माला। विकारों पर विजय होना, मन विजय पाना।
बाबा आताल कुमरी को सीताफल क्यों कहा जाता? आताल कुमरी को कुमरी को सीताफल क्यों कहा जाता? आताल कुमरी सीताफल है, आताल कुमरी को सीता सीताफल क्यों कहा जाता
है? आताफल सीताफल क्यों कहा जाता?
वो तो फल होता है सीताफल, जिसे शरीफा कहते हैं।
सीताफल बोलते
हाँ,
क्योंकि उसके अंदर जो बीज बैठा हुआ है ना, वो बीज बड़ा है और एकदम काला हो गया है। इसलिए वो सीताफल कहा जाता है। वो बीज राम वाली आत्मा है, उसके बुद्धि रूपी पेट में बैठा हुआ है, तो उसको बहुत याद आता है। बाबा मार्फत ब्रह्मा कुमारी कोई मुरली में नहीं आया, मुरली में आया है शिव बाबा मार्फत ब्रह्मा। वो मुरली रिवाइज कोर्स की मुरली है या ब्रह्मा बाबा के समय की मुरली है? अंडर में करो ब्रह्मा बाबा, ये केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा लिखना है, ऊपर लिखना है शिव बाबा, ब्रह्मा कुमारी जी नहीं लिखा है केयर ऑफ।
ये कौन से तारीख की मुरली है ब्रह्मा बाबा की?
शरीर छोड़ने के बाद 73 में मुरलियों में चेंज करना शुरू कर दिया या नहीं कर दिया? खत्म, बात हो गई। क्या क्लास में है? हर एक सीधी सी बात है, ब्रह्मा शरीर छोड़ दे तब केयर ऑफ ब्रह्मा कुमारी चलेगा, ये ब्रह्मा मौजूद है तो केयर ऑफ ब्रह्मा कुमार चलेगा, ब्रह्मा चलेगा। तो जब शरीर छोड़ दिया, हाँ, ये सच्ची गीता भी जो छपाई गई है वो क्या है, कहाँ है? ये तो लिखा है ना 73 की मुरली है, 73 में जो मुरली लिखी गई है वो ओरिजिनल है या रिवाइज कोर्स की है? तो रिवाइज कोर्स की मुरली है, है? गुलजार दादी ब्रह्मा कुमारियों में मुख्य ब्रह्मा कुमारी साबित होती है? मुख्य ब्रह्मा कुमारी तो तब साबित हो जब गुलजार दादी चैतन्य अवस्था में हो, उस समय जब ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है तो गुलजार दादी चैतन्य रहती है या मृत प्राय हो जाती है? तो केयर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज और ब्रह्मा कुमारीज बहुवचन है या एक वचन है? तो क्या साबित होता है? एक गुलजार दादी के लिए बोला है ब्रह्मा कुमारीज या सब ब्रह्मा कुमारियों के लिए बोला है? सभी के लिए बोला है। उनका लक्ष्य कोई एक गुलजार दादी की तरफ नहीं है, लिखने वालों का, छापने वालों का, उनका लक्ष्य है कि जितनी भी ब्रह्मा कुमारियां इंचार्ज हैं वो साफ केयर ऑफ ब्रह्मा केयर ऑफ शिव बाबा हैं।
की जो कथा है इंजरी की कथा, ये कन्या ज्यादा करते हैं कार्यक्रम आया, और की कथा है वो तीसरा नेत्र खुलने की कथा, जब तीसरा नेत्र पूरा खुल जाता है उस आत्मा की एक काम करके भक्म हो जाती है। हाँ? और उसका जो श्रेष्ठ कन्या है वो पहाड़ में प्रत्यक्ष कर दी
है।
और उस बात को जो श्रेष्ठ कन्या है कन्या
हाँ?
वो पहाड़ की दुनिया में उस पहाड़ी को प्रत्यक्ष करते हैं, ऐसे बाबा ने वार्तालाप में बोला
हाँ?
तो ये श्रेष्ठ कन्या कौन सी
प्योरिटी को ज्यादा फॉलो करती है, प्योरिटी को ज्यादा अपनाती है। और
बाबा ये तो आप एडवांस का सच गीता है
हाँ?
इसमें रिवेस्ट मुरली आठ घंटे का तो सच गीता
है,
रिवेस्ट सावित्री का रिवेस्ट मुरली इसमें ऐड करना प्रिंट करने के लिए। तो
ये किताब इसलिए छापी गई है कि ब्रह्मा कुमारियां जो बातें बोलती हैं झूठ झूठ है, उनको ही काटने के लिए उनके ही महावाक्य उनके सामने रख दें।
बाबा एक बात बाबा जो अष्टभक्त की बात बाबा ने बताई, अष्टभक्त की बात
क्या पत्र है
उसके लिए बाबा ने बोला कि आठ आत्मा से आठ जगह से टेढ़ा कर दिया
हाँ जी,
क्योंकि आठ आत्मा से आप उसके जिस जिस अंग को टेढ़ा किया है बाबा उसका क्या तात्पर्य
है,
जिस जिस अंग को आठ आत्मा ने टेढ़ा कर दिया इस बात को सूचित कर रहे बाबा,
इस बात को सूचित कर रहे हैं।
भक्ति बाबा का पार्टनर की बात है तो जो आठ जगह को जो टेढ़ा करते हैं मतलब आठ अंग को जमीन अंग का पता चल रहा है जीवन की बात,
जब उनके प्रभाव से आत्मा प्रभावित होगी तभी तो टेढ़े होंगे। अगर प्रभाव से प्रभावित नहीं होगी, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो असर पड़ेगा है? नहीं पड़ेगा।
हाँ जी,
गले का जो बात है वो तो हम लोग के लिए अच्छा है, गले में जो ज्ञान निकल रही
है
गला जो पीड़ा दिखाई है किसी का वो तो हम लोग के लिए अच्छा है, उसमें बारह को गोली निकल रही है क्लैरिफिकेशन
तो
टेढ़ा नहीं है।
वो आत्मा तमो प्रधान है या सतो प्रधान है?
उसी ज्ञान पर चलने से तो हमारा कल्याण होगा।
अच्छा वक्र जो है वो देहधारी के लिए बोला गया है या सुप्रीम सोल के लिए बोला गया है? देहधारी के लिए बोला गया है। उसमें वाणी चलाने वाला सुप्रीम सोल है या देहधारी आत्मा है? है सुप्रीम सोल है, वो थोड़े टेढ़ा होता है।
हाँ जी,
गले से बाबा बाचा निकलती
है,
इस गले से बाबा बाचा निकलती है
वो कंट्रोल में किसके है? सुप्रीम सोल के कंट्रोल में है, परंतु सुप्रीम सोल कृष्ण बच्चे को बहुत प्यार करता है, मुरब्बी बच्चा है, इसलिए वो बीच में अगर बोलता भी है तो माफ कर देता है। इंटरफियरेंस को विरोध नहीं करता उस समय, जैसे कोई बूढ़ा बाबा होता है और छोटे बच्चे उसके कंधे पे चढ़ करके उसकी बात को दुलकारते हैं, अपनी बात बोलते हैं, तो बाबा जो है क्रोध में आता है क्या? नहीं क्रोध में आता, बोलने दो।
सप्तऋषि
आसमान में है ऐसा सजावट है वो देखने में एक क्वेश्चन मार्क आता है। माता जी कहते हैं क्यों आता है क्वेश्चन मार्क, क्यों आता है
क्वेश्चन? कौन करेगा? जिसकी समझ में नहीं आएगा वो क्वेश्चन करेगा, समस्या पैदा करेगा, या जिसकी समझ में आ गया वो समाधान करेगा? अरे समाधान स्वरूप बनना अच्छा है या समस्या स्वरूप बनना अच्छा है? है समाधान स्वरूप जो है वो क्वेश्चन करने की दरकार नहीं है, और करेगा भी तो समाधान करने के लिए, समाधान को समझाने के लिए करेगा। तो सप्तऋषि जो हैं वो अधूरे नारायण हैं, ये संपूर्ण नारायण बनते हैं, अधूरे नारायण बनते हैं। तो उनके अंदर समस्याएं रहती हैं या नहीं रहती हैं? है, रहती हैं। वो है ही समस्या स्वरूप, हाँ बेसिक में ही है। हम कहाँ कह रहे हैं एडवांस में? हाँ,
और आगे भी बढ़ना है अभी
है?
और आगे भी बढ़ना है, बाबा का रोग अच्छा नहीं है अभी।
अच्छा अच्छा अच्छा, ओम शांति।